रिहान, जो सादिया और फैजान की सारी बातें सुन चुका था, चुपचाप वापस आ गया। घरों के बीच से जो लंबी सीढ़ियां छत तक जाती थीं, वो उसी तरफ चला गया और ऊपर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ छलक रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि सादिया की वजह से कितना बड़ा झमेला खड़ा हो गया। उसने गुस्से में आकर जुबैदा बेगम से कितनी बदतमीजी करती थी, जबकि अब उसे समझ आ चुका था कि उन्हें भड़काने वाली असल में सादिया ही थी। उधर नूर पहले लॉन में आई, फिर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसने देखा कि रेहान गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा है। उसके चेहरे की परेशानी देखकर नूर कुछ कहे बिना ही वापस नीचे आ गई। उसने तुरंत अरमान को फ़ोन किया। गलती आपकी है अरमान, रेहान भाई बहुत परेशान बैठे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो गलतफहमी और बढ़ जाएगी, नूर ने चिंता भरी आवाज़ में कहा। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दोनों घरों में दरार आ जाए। अरमान तुरंत ऊपर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही रेहाना बेगम वहां पहुंच चुकी थीं। रेहान अपनी माँ को सब बता चुका था कि असल गलती सादिया की थी और उसने गुस्से में जुबैदा बेगम पर इल्ज़ाम लगा दिया था। तभी अरमान वहां आ गया। भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? उसने आते ही पूछा। उसी वक्त नूर भी अपनी तरफ वाले लॉन से ऊपर आ गई। देखिए, गलती मेरी भी है और अरमान की भी। आप चाची जान पर गुस्सा हो गए, नूर ने नरमी से कहा। फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर उन्होंने मुझे डांट दिया या हाथ उठाने की कोशिश की तो क्या हुआ, वो बड़ी हैं। नूर की बात सुनकर रेहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। रेहाना बेगम भी चुपचाप ये सब देख रही थीं। अरमान आगे बढ़ा और बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो। इतने में सादिया भी ऊपर आ गई। सब ठीक हो जाएगा, नूर ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, मगर सादिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहती ही नहीं थी कि सब ठीक हो। उसे लगा था कि जितनी गलतफहमियां बढ़ेंगी उतनी जल्दी नूर इस घर से निकल जाएगी। लेकिन अब रेहान और रेहाना बेगम दोनों सच जान चुके थे। रेहान ने माहौल बदलने के लिए मुस्कुराकर कहा, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ चलो, अरमान तुरंत बोल पड़ा। नूर चलो, रेहान ने कहा, लेकिन उसने सादिया को साथ आने के लिए नहीं कहा। तीनों नीचे चले गए। थोड़ी देर बाद रेहाना बेगम भी नीचे उतर गईं। सादिया वहीं खड़ी रह गई। उसका गुस्सा अब उबल रहा था। वो तेज़ कदमों से अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसका पूरा प्लान ही फेल हो चुका था। उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। करीब एक दो घंटे बाद रेहान कमरे में आया। ये तुम्हारी आइसक्रीम है, उसने सादिया से कहा और सीधे बाथरूम में चला गया। सादिया ने गुस्से में आइसक्रीम का बॉक्स खोला। आइसक्रीम पूरी तरह पिघल चुकी थी, मगर उससे कहीं ज़्यादा पिघल चुका था उसका सब्र। उसका गुस्सा अब दोगुना हो चुका था। वो पागल नहीं थी, आज वो बस पागल बनने का नाटक कर रही थी। नूर भी वापस अपने कमरे में आ गई थी। सुबह यूनिवर्सिटी में उसका टेस्ट था, इसलिए उसे पढ़ाई करनी थी। वो किताबें खोलकर बैठी रही थी कि उसके फ़ोन पर अरमान का नाम चमकने लगा। नूर ने फ़ोन देखा, मगर उठाने के बजाय कॉल काट दी और फिर पढ़ाई में लग गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फ़ोन फिर बजने लगा। इस बार अरमान की वीडियो कॉल थी। नूर ने हल्की सी सांस ली और कॉल उठा ली। फ़ोन ऑन करके उसने उसे सामने टेबल पर रख दिया और खुद किताब लेकर पढ़ने बैठ गई। क्या हुआ नूर, अभी तो हम लोग साथ थे, अरमान की आवाज़ आई। देखो नूर, ये बात गलत है, नूर ने भौहें चढ़ाई। क्या गलत है? पढ़ाई करना, अरमान ने मासूमियत से कहा। नूर ने उसे घूर कर देखा। पढ़ाई करना गलत है? अरमान मुस्कुरा दिया। नहीं, मगर मुझे तुम्हारी फिर से याद आ रही है, नींद नहीं आ रही, चैन नहीं है। प्लीज़ अरमान, नूर ने धीमे से कहा, मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, अरमान ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा। सच कह रहा हूँ, मैंने अभी आंखें बंद की और मुझे तम दिखाई देने लगी, नूर ने सिर हिलाया। कल आपकी वजह से मेरी क्लासेस भी मिस्ड हो गई, क्योंकि मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी तक चली गई थी, और अब आप मुझे टेस्ट की तैयारी भी नहीं करने दे रहे। अरमान हंस पड़ा। तुम भी तो मुझे ख्वाबों में आकर परेशान कर रही हो, उसने शरारत से कहा। मेरे सपनों में आकर डिस्टर्ब करती हो, नूर हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर किताब बंद नहीं की। मैं छत पर बैठा हूँ, अरमान ने कैमरा घुमाकर दिखाया। ठंडी हवा चल रही थी और वो सच में टेरिस पर था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आओ, हम दोनों छत पर बैठकर पियेंगे। नूर ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, आ रही हूँ। थोड़ी ही देर में नूर दो कप कॉफ़ी बनाकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर पहुँच गई। अरमान पहले से ही वहाँ खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने नूर को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। अरमान ने अचानक नूर का हाथ पकड़ लिया। नूर चौंक गई, मगर उसने हाथ नहीं छुड़ाया। अरमान उसे धीरे धीरे अपने साथ लेकर चलता हुआ रेलिंग के पास आ गया। वो जगह ऐसी थी जहाँ से दोनों घरों के लॉन साफ दिखाई देते थे। दोनों कोठियाँ असल में दो भाइयों की थीं, इसलिए उनकी बनावट भी लगभग एक जैसी थी। टेरेस का एक हिस्सा उन कमरों के ऊपर था जो दूसरी मंजिल पर बने थे, और बीच में एक ऐसा खुला हिस्सा था जहां दोनों घरों की छतें आपस में जुड़ी हुई थीं। वहीं बैठने के लिए थोड़ी जगह भी बनी हुई थी। नूर ने घबराकर चारों तरफ देखा। कोई हमें देख लेगा, उसने धीरे से कहा। हमें इतनी रात को मिलना नहीं चाहिए। अरमान हल्का सा मुस्कुराया। कोई नहीं देखेगा, सब सो चुके हैं। उसी वक्त नीचे लॉन में हल्की सी हलचल हुई। फैजान अपनी ऑनलाइन ट्यूशन खत्म करके सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ वाले रास्ते से बाहर निकला था। उसकी नजर भी ऊपर छत की तरफ चली गई, जहां नूर और अरमान खड़े थे। नूर ने भी नीचे देखा और घबरा कर बोली, वो देखो कोई लॉन में है। अरमान ने झुककर देखा और बेपरवाही से कहा, फैजान होगा, उसकी आदत है रात को घूमने की, शायद गेट पर सिक्योरिटी वाले से मिलने जा रहा होगा। नूर अभी भी थोड़ा घबराई हुई थी। अरमान ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और बोला, चलो नीचे चलते हैं। दोनों धीरे धीरे चलते हुए अरमान की साइड वाले लॉन की तरफ उतरने वाली सीढ़ियों से नीचे आ गए, क्योंकि वहां अंधेरा ज्यादा था और ऊपर छत पर खड़े रहना अब उन्हें थोड़ा खतरनाक लग रहा था। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किसी की नजर उन पर पड़ चुकी थी। अगली सुबह जब रेहान तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो वहां सिर्फ रेहाना बेगम बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रेहाना बेगम ने इधर उधर देखा और पूछा, सादिया कहाँ है, अभी तक नहीं आई? रेहान ने कहा, सो रही है। सोने दो, रेहान ने ठंडे लहजे में कहा, आजकल उसकी जबान बहुत लंबी हो गई है। क्या मतलब? पीछे से आती हुई सादिया की आवाज सुनकर दोनों ने पलट कर देखा। सादिया वहीं खड़ी थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कुछ नहीं, उसने बेपरवाही से कहा और कुर्सी खींच कर बैठ गया। रेहाना बेगम ने भी बात बदल दी, नूर नहीं आई अभी तक। मैं उसे उठाने गई थी, घर की मुलाजिमा बता रही थी कि दरवाजा भी नॉक किया था मगर वो उठी ही नहीं। मैं उठाकर लाती हूँ उसे, सादिया जल्दी से बोली। रहने दो, रेहान ने ठंडे स्वर में कहा, उठ जाएगी अपने आप, शायद कल थकी होगी। फिर उसने पूछा, अरमान अभी तक नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया तो रेहान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चलो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ मॉम, फैजान को मेरे ऑफिस भेज देना। उसने एक बार भी सादिया की तरफ नहीं देखा, वो उसे पूरी तरह इग्नोर करता हुआ वहां से चला गया। रेहान के जाते ही सादिया का सब्र टूट गया। वो मुड़कर रेहाना बेगम से बोली, ताई अम्मी ये क्या हो रहा है? रेहाना बेगम ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय मुलाजमा की तरफ देखा। इतना घी क्यों लगा गया है परांठों पर? उन्होंने सख्ती से कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कम लगाया करो? सादिया समझ गई कि उसे जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा था। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया।
अम्मी कल अरमान के घर में इतना कुछ हुआ, फिर रात को सब लोग साथ में आइसक्रीम भी खा रहे थे, अब फैजान को ऑफिस बुलाया जा रहा है जबकि वो पहले मना कर रहा था।